الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمه صديقة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. This class میں ہم اپنے حضرت بیوز الفقار احمد نقشبندی دامت برکات ان کی کتاب میں ساری عورت میں سے میں ساری ماں کا عنوان پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم تھے پیج نمبر 131 کے اوپر 131 پہ، اور جو اس کا سب ٹائٹل چل رہا ہے، عنوان چل رہا ہے، وہ تھا بلوغت کی عمر کے بچوں کی تربیت. یعنی جو بچے بلوغت یعنی بالغ ہو جائیں، بلوغت عمر کو پہنچ جائیں، تو ان کی پھر کیسے تربیت کرنی ہوتی ہے. یہاں پر تعلیم کا لفظ کیوں استعمال نہیں کیا، جبکہ اس سے کم عمر کے جو بچے تھے ان کے لیے تعلیم اور تربیت دونوں کا لفظ استعمال کیا تھا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کی تعلیم جو ہے نا وہ اتنی سوفسٹیکیٹڈ ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جتنی کہ اسکول والوں نے اور ایجوکیشن منسٹری والوں نے بنا دی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو ایک بہت بڑا ایک عفریت من الجن بنا دیا ہے چھوٹے بچوں کی تعلیم کو. اس کو جو ہے نا وہ ایک کیا کہتے ہیں انگریزی کے اندر بھوت کو نا، فرانکنسٹائن، رائٹ، ایک بھوت بنا دیا ہے چھوٹے بچوں کی تعلیم کو. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ جی اسکول میں داخل نہیں کرائیں گے تو پھر جاہل رہ جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو پیدا ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ اسکول کے اندر نام لکھوا کر کے آ جاتے ہیں، اور ایک سال کے اندر ہی جو ہے وہ کسی ڈے کیئر میں ڈال دیتے ہیں، اور 2 سال کی عمر میں جو ہے وہ کنڈر گارٹن میں ڈال دیتے ہیں، اور 3 سال کی عمر میں پتہ نہیں کیا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ جہالت ہے، یہ تعلیم نہیں ہے، یہ صرف اور صرف جہالت ہے. تو چھوٹے بچوں کی تعلیم تو ماں نے خود کرنی ہوتی ہے اور کرنی ضروری ہے، اور اس نے خود ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ خود علم حاصل کرے، اگر وہ خود جاہل رہ گئی، اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی جب وہ چھوٹی تھی، تو اب وہ بڑی ہو گئی ہے نا، اب وہ ماں بن گئی ہے نا، اب وہ خود علم حاصل کرے اور اپنے بچوں کو سکھائے، ٹھیک ہے. تو جب چھوٹے بچوں کی تعلیم و تربیت ماں نے گھر میں کر لی ہوتی ہے، سیکھ سکھا کر کے، بات کو غور سے سن کر کے، سمجھ کر کے، تب وہ بچوں کا ایسا بیس بن جاتا ہے، اتنا اسٹرانگ ان کا اور اچھا ان کا جو ہے نا وہ بنیاد بن جاتی ہے، کہ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں یعنی بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں نا، تو اب ان کی تعلیم اب ذرا زیادہ یعنی وسیع ہو گئی ہے، اس میں تھوڑی سی اور ٹیکنیکلٹیز آ گئی ہیں جو اب ماں کے بس کی بات نہیں ہے. اب ماں نہیں کر سکتی یہ والی تعلیم، کیونکہ اب یہ اس کے اندر بہت ساری تفصیلات آ گئی ہیں. اب جو ہے نا یہ تعلیم آپ کو جو اس شعبے کے لوگ ہیں، تعلیم کے شعبے کے لوگ ہیں جن کو ٹیچر، اساتذہ، استانیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ شعبے کے لوگ پھر تعلیم کریں گے. اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ تربیت کریں گے. اب یعنی تربیت کنٹینیو رہے گی، آپ کے پاس ہی رہے گی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ نے پہلے بھی تربیت کری ان کی، اور آپ جو ہے وہ تربیت کو آگے لے کر کے بھی چلیں گے، ٹھیک ہے. تعلیم بے شک اب آپ نے دوسروں کو دے دی، کیونکہ اب آپ کر نہیں سکتی ہوں والی تعلیم. پہلے تو ایسا نہیں تھا نا، پہلے تو آپ جھوٹ کا جو پروپیگنڈا تھا اسکول والوں کا، اس کا شکار ہو کر کے آپ نے تعلیم جو ہے وہ ان کے حوالے کی بھی تھی، ٹھیک ہے نا، ورنہ حقیقت میں تعلیم ان کے حوالے کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ٹھیک ہے. اگر آپ نے نہیں حاصل کری، اگر آپ کو نہیں آتا، تو اب تو آپ بڑی ہو چکی ہیں، اب آپ خود تعلیم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو سکھائیں، پڑھتی جائیں سکھاتی جائیں، پڑھتی جائیں سکھاتی جائیں، سیکھتی جائیں سکھاتی جائیں، ٹھیک ہے نا. گپے مت مارا کریں اپنی دوستوں کے ساتھ، سہیلیوں کے ساتھ، اپنی امی کے ساتھ، اور اپنے جو ہے وہ رشتے داروں کے ساتھ. علم حاصل کریں تاکہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ تعلیم دے سکیں، ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ یہ کام کریں گی تو پھر جو ہے وہ آپ کے بچے اس قابل ہو سکیں گے کہ بالغ ہونے کے بعد جو ہے وہ دوسروں کے ہاتھوں جا کر کے خراب نہیں ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اگر آپ نے اپنا کام نہیں کیا تو آپ نے پہلے ہی ان کو بگاڑ دیا، بگاڑنے والوں کے حوالے کر دیا. اب آپ تماشا دیکھیں اس کے بعد. اب آپ روئیں دھوئیں یا جھوٹی ہنسی اپنے منہ کے اوپر سجا کر کے خوش ہونے کی کوشش کریں کہ نہیں سب ٹھیک ہے، ایوری تھنگ از نائس اینڈ کول، رائٹ، دھوکہ دیں اپنے آپ کو کہ سب کچھ ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. یا تو روئے دھوئیں یا دھوکے میں ہنسیں، یہ پھر آپ کی قسمت ہے، ٹھیک ہے. تو جب بچے بالغ ہو جاتے ہیں نا، تو پھر اس کے بعد ماں جو ہوتی ہے وہ तालीम से फिर वो एक वो हो जाती है, मुस्तस्ना हो जाती है, या वो तालीम से जो है फिर वो फारिग हो जाती है अपने बच्चों के। अब वो खाली जो है वो तरबियत को कंटिन्यू करती है। तो वो फिर हजरत ने उसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स लिखे, तो उनमें से अब जो पॉइंट हमने आज पढ़ना था तो एक्चुअली पिछला पॉइंट ही अभी कंटिन्यूड है, कि बी फेमिलियर विद देयर इंटरेस्ट एंड हॉबी, कीप ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन विद द टीनेजर्स, क्योंकि ये जो बालक होते हैं ना, या टीन एज उम्र के बच्चे हो चुके होते हैं, 13 से लेकर के 19 तक, जिसको टीन एज कहा जाता है अंग्रेजी के अंदर, क्योंकि उनके अंदर टीन का लफ्ज आता है, वरना बालिग होने का वैसे टीन एजर से कोई ताल्लुक नहीं है। बालिग तो बच्ची जो है वो 9 साल की उम्र में भी हो सकती है, 10 साल की उम्र भी हो सकती है, और बच्चा जो है वो 12 साल की, यानी टीजर टीन एजर से पहले भी वो बालिग हो सकता है 12 साल की उम्र में भी, ठीक है। तो फरमाते हैं कि उनके शौक और मशगलों को जाने, नौजवान बच्चों के साथ ऐसा ताल्लुक बनाएं कि आप एक दूसरे के साथ खुल्लम खुल्ला हर बात कर सकें, ठीक है। पहली बात तो हो गई शौक और मशगलों को जाने, यानी मेरे बच्चे के जो है ना वो दिलचस्पी किस लाइन में है, क्या उसकी जो है वो चीज उसको इंटरेस्ट करती है। मुख्तलिफ बच्चों के शौक होते हैं, कुछ बच्चे आप देखेंगे, बच्चियां भी बच्चे भी, कि वो यानी उनके लिए कागज के ऊपर जो है ना वो ड्राइंग करना और ये चीज उनको ज्यादा पसंद आती है, वो ये काम कर रहे हो। कुछ बच्चों को आप देखेंगे वो ब्लॉक्स के जरिए ऐसी चीजों को बिल्ड करना उनके लिए ज्यादा दिलचस्प होता है, ठीक है। और इसी तरीके से दूसरे बच्चों के मशगले माएँ जो होती हैं वो और ज्यादा, आई एम श्योर उनके टिप ऑफ द फिंगर टिप्स के ऊपर जो है वो उस तरह की बहुत सारी चीजें होंगी, कि कोई बच्चा जो है वो इस चीज में ज्यादा शौक रखता है, इस चीज में ज्यादा रखता है। मुझे तो भी दो दो जहन में आई तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो वालदैन शुड बी अवेयर, वालदा यहाँ पे तो जो कि मिसाली माँ का टॉपिक है, मिसाली बाप का टॉपिक नहीं है, ये हम मिसाली माँ पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कभी वालदैन दोनों का लफ्ज हम इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर ये माँ के लिए ये सब कुछ ना, तो माँ को जो है वो शौक और मशगलों से वाकफियत होनी चाहिए अपने बच्चों की, ठीक है। क्या इंटरेस्ट करता है मेरे बच्चे को या मेरी बच्ची को। और फिर उसके बाद जो अगला पॉइंट है ना, वो हजरत ने लिख तो दिया है, लेकिन उसकी तो और ज्यादा तफसीर करनी पड़ेगी, कि नौजवान बच्चों के साथ ऐसा ताल्लुक बनाए कि आप एक दूसरे के साथ खुल्लम खुल्ला हर बात कर सकें। अब ये खुल्लम खुल्ला हर बात करने का मतलब आजकल क्या लिया जाता है, कि जो जिनसी मामलात हैं बच्चों के और दूसरे जो जो इस किस्म के जो टॉपिक्स हैं ना, जिनको के एक जिस हया का पर्दा जिनके ऊपर होना, ठीक है, तो उनको भी जो है ना वो खुल करके डिस्कस करें, उनको भी जो है ना वो हर चीज। और हमने अनफॉर्चुनेटली सुना, औरतों से सुना, कि वो उन्होंने बताया कि यानी ऐसे जो है ना वो अल्फाज इस्तेमाल कर रही होती हैं अपनी औलाद के साथ, और ऐसी टर्मिनोलॉजीज जो है वो बेधड़क इस्तेमाल कर रही होती हैं, कि यानी कोई शरीफ औरत जो है ना वो बड़े उम्र के किसी औरत के साथ भी ऐसी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करने से कतरा है, ठीक है ना। तो ये तो दिमाग की खराबी बोल रहे हैं, क्या दिमाग में रसूली होती है उनके जो ये काम कर रही होती है, ठीक है। यानी अजीब गरीब किस्म की जो है ना वो वल्गर किस्म की अल्फाज इस्तेमाल कर रही होती हैं अपने बच्चों के साथ। तो ये खुल्लम खुल्ला का जो लफ्ज यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप जो है ना वो इनडिसेंट और वल्गर किस्म की जो है ना वो बातें करना शुरू हो जाए, ठीक है। पहली बात, ये तो वैसे जो जो करते हैं ना बगैर किसी वजह के जो ये करते हैं, तो वो उनकी अपनी असल में उठान ऐसी ऐसी हुई भी होती है, उन्होंने जो है ना वो यही जुबान अपने घर में सीखी होती है, या अपने जो है वो अपने माहौल मुआशरे के अंदर यही जुबान सीखी होती है, तो वो अपने बच्चों के साथ वही वाली जुबान इस्तेमाल कर रही होती है। और अकल नाम की उनके पास कोई चीज़ होती नहीं है, अकल उनकी सारी की सारी जो है ना वो शॉपिंग के अंदर लग रही होती है, या जो है वो दूसरे अपने ख्वाहिशात पूरी करने में उनकी अकल इस्तेमाल हो रही होती है, खाली ये समझ नहीं उनको आ रहा होता कि बच्चों के साथ कैसे बात करनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि बच्चों को, यानी ये जो एक एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया है ना मीडिया के जरिए से खास तौर पर, कि अगर आप बच्चे के साथ जो है ना वो इन टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं करेंगे, तो फिर बच्चा जो है वो किसी और से जाकर के इन टॉपिक्स के ऊपर बात करेगा, ठीक है। यानी वही बेहद टॉपिक्स होते, ठीक है। सेक्स के बारे में था टॉपिक्स, और जिस्म के आज़ा के बारे में टॉपिक्स, और इस किस्म के जो टॉपिक्स हैं, बच्चा किसी और से जा करके बात करेगा। इस वजह से जो है ना, माँ बाप को खुद ही बात करना चाहिए इन सब चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो भाई इसकी तो फिर वही बात है ना, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें कि भाई आपने अपने बच्चों को गंद खाने में भेजा, ठीक है ना, गंदे माहौल के अंदर भेजा, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना उनका आपने बर्दाश्त किया, ठीक है, चाहे वो स्कूल में था, चाहे वो जो है वो अपने उनके दोस्तों में था, चाहे जो है वो उनके रिश्तेदारों में था, ठीक है ना, जहां से उन्होंने ये चीजें सीखी हैं, अब इसका हल आपको क्या, शैतान ने हल इसका क्या सिखाया कि अब आप भी जो है वो यही बातें बच्चों से करना शुरू कर दें, ठीक है ना, यानी पहले जो है ना वो बीमार करो किसी को, मीर क्या सादा है बीमार होए जिसके सबब, उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं, पहले शैतान की बात मान करके आपने अपने बच्चों को रूहानी तौर पर बीमार कर दिया, अब शैतान ही के लौंडे से जाकर के जो है ना वो उसकी दवा क्या ले रहे हैं कि अब तुम भी यही बातें करो अपने बच्चों से जाकर के, ठीक है ना, तो शैतान के साथ आपका ताल्लुक होगा तो वो यही करेगा, बीमारी पहले पहले बीमार करवाएगा, फिर उसके बाद बीमारी की दवा भी जो है ना वो मजीद बीमारी देगा, ठीक है, लेकिन अगर आपने पहले रहमान के बंदों की मानी होती, राइट, और अपने बच्चों को बुरे गंदे माहौल से बचाया होता, तो फिर इसकी जरूरत नहीं होती कि आप खुल्लम खुल्ला जो है वो अपने बच्चों के साथ सारी बातें करें, ठीक है, बात समझ में आ रही, खुल्लम खुल्ला अपने बच्चों के साथ सारी बातें नहीं होती फिर उसकी जरूरत, क्योंकि आपके बच्चों को इस किस्म का एक्सपोजर मिला नहीं है, अब वो वक्त के साथ साथ जैसे उनके अपने जिस्म में तब्दीली आएगी तो वैसे फिर उनके साथ बात करनी होगी, तो भाई वो बात जो है वो तो तब्दीली के साथ साथ चल रही है ना, जिस्म में तब्दीली आई, अब बच्ची को जो है वो जब जब वो बालिग होएगी, ठीक है ना, तो अब उसको जो उसके मसाइल हैं तो वो तो माने उसके साथ डिस्कस करने, उसको बताना है ना कि जी अब कैसे करना है आपने इस मामले, तो भाई उसके अंदर अल्लाह ताला ने तब्दीली ला दी है ना, ये तो नहीं कि आप जो है वो तब्दीली लाने से पहले तब्दीली आई नहीं है उसके अंदर और आप जो है वो उससे जो है वो टॉपिक से ऊपर बात कर रही हैं, नहीं, शादी के बाद क्या होता है, अभी उसकी शादी हुई नहीं है, शादी से पहले उसको उसको तैयार करो, ठीक है ना, और शादी के बाद जो है वो उसको गाइड करती रहो, नहीं, अभी वो 13 साल की हुई है उसकी शादी में जो है वो अभी आपने कम से कम 10 साल के बाद आपने उसकी शादी करनी है या 8-9 साल के बाद उसकी शादी करनी है, और अभी 13-14 साल की बच्ची को जो है ना वो सारे के सारे आप शादी वाले मामला बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं भाई, इसलिए ना क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ बात करेगी, तो क्या ख्याल है आपका कि वो आप जब उसके साथ ये बातें कर लेंगे तो अब वो अपने दोस्तों के साथ ये बातें नहीं करेगी, भाई वो उसके दोस्त बन चुकी हैं, तो जो दोस्त उसकी बन चुकी हैं उनके साथ उसने वैसे भी बात करनी है चाहे आप उसे बात करें या ना करें, क्योंकि वो उसकी दोस्त बन चुकी है ना, तो ये जो आपको शैतान ने जो है ना ये पट्टी पढ़ा दी है, ये आपके दिमाग में जो ये चीज डाल दी है कि अगर आप बात कर लेंगे तो फिर वो अपने दोस्तों से बात नहीं करेगी, ये आपको उसने बड़ा जबरदस्त किस्म का बेवकूफ बना दिया और कुछ नहीं, ठीक है, अगर आपको कुछ अकल होती, अगर आप पहले बात मानती तो फिर आप अपने बच्ची की ऐसी बच्चियों से दोस्ती बनने नहीं देती ना जिन्होंने इस किस्म की जो है बेहाई की बातें करनी थी इस उम्र के अंदर, जबकि अभी इसकी जरूरत नहीं है कोई भी, ठीक है जी, तो समझ में आई बात, ठीक है, तो ये जो खुल्लम खुल्ला हर बात कर सके जो है ना वो इसमें तफसील है, तो अब ये हजरत ने जिस जिस किस्म के ऑडियंस से ये बातें कर रही हैं और जैसे लोग जो है वो उस किस्म के बयान सुनने के लिए आते हैं, तो फिर उनमें से अक्सर जो है ना वो ऐसे ही होते हैं कि जिनके उन्होंने पहले से अपना बेड़ा गरक किया हुआ होता है, बच्चों को जो है ना उन्होंने धक्के दिए हुए होते हैं गंदे तरीन माहौल के अंदर, अब उसके बाद जो है ना वो यही है कि भाई अब करें तो क्या करें, भाई बात करो बच्चे के साथ यार, ट्राई टू नो वट शी इज गोइंग थ्रू, ट्राई टू नो वट ही इज गोइंग थ्रू, ठीक है, तो अब आप कर चुके हैं इस किस्म का तो फिर यानी एटलीस्ट बी अवेयर, ठीक है, और उसको इसका असल हल ये है कि आप उसको उस माहौल में से निकालने की कोशिश कर, उस माहौल में से निकालने की कोशिश कर, ठीक है, इसकी सादा सी मिसाल हम यही देते हैं कि अगर आपने अपने बच्चे को डीप ओशन के अंदर धक्का दे दिया है ना, डीप ओशन के अंदर, ठीक है, गहरे समंदर के अंदर धक्का दे दिया है ना, तो अब उसको जो है ना वो आप स्विमिंग सिखा करके उसको नहीं बचा सकते, स्विमिंग सिखा करके उसको नहीं बचा सकते। क्यों? इसलिए कि वो ओशन इतना डीप है कि कोई स्विमर उसमें से नहीं निकल सकता, उसमें से बच उसमें रहते हुए नहीं बच सकता। तो डीप ओशन में बचाने का तरीका क्या है आप बताएं? डीप ओशन में किसी को आपने बचाना है, वो ओशन में गिरा हुआ है, अब आप उसको स्विमिंग सिखाएंगे वहां पे जा करके? तुम स्विमिंग सीख जाओ, तुम ना स्विम करते हुए फिर जो है ना वो किनारे पहुंच जाओगे, क्या तरीका है इसका आप बताएं जी? गहरे समंदर में कोई डूब रहा है, इसको कैसे बचाते हैं? उसको निकालेंगे वहां से, कैसे निकालेंगे? कश्ती लेकर के जाएंगे उसके पास, किसी डीप ड्राइवर को भेजेंगे, डीप सी ड्राइवर को भेजेंगे। नहीं, डीप सी ड्राइवर ऐसे नहीं होते जो कि डीप ओशन के अंदर जो है ना वो किसी को बजा करके बाहर ले आए। हाँ, कश्ती भेजेंगे, कश्ती में से कोई ड्राइवर जाएगा उसको निकाल करके बाहर, निकाल कहाँ निकालेगा? कश्ती के अंदर निकालेगा ना, राइट? ये तो नहीं कि उसको जाके स्विमिंग सिखाना शुरू कर देगा, तो अभी स्विम योर वे आउट, स्विम योर वे आउट ऑफ द ओशन, क्या ख्याल है? तो कश्ती में निकाल करके उसको बचाया जा सकता है, क्या मतलब? ओशन से बाहर निकालना होगा उसको। अब जो है ना ये जो हमने हजरत की इस जुमले का बजाय जो मतलब समझ आता है वो ये है कि आप जाकर के उसके अंदर ही आप भी चले जाएं और आप भी जो है ना वो खुल्लम खुल्ला हर चीज को डिस्कस करना शुरू कर दें, गोया कि अब आप उसको स्विमिंग सिखा रहे हैं। वाइल स्टिल बींग इन द ओशन, लीविंग देम इन द ओशन, यू आर ट्राइंग टू टेल देम हाउ टू स्विम। नो, यू हैव टू टेक ए लाइफ बोट टू देम एंड ब्रिंग देम आउट, अगर आप उसको बचाना चाहते। अगर नहीं बचाना चाहते कि जाओ मरो जा करके तुम्हारी जो किस्मत होगी, है तो फिर ठीक है उसको छोड़ दें, आप अपना टाइम जाया ना करें, अपने आप को बचाएं। अगर आप भी जो है वो डीप सी ओशन के अंदर जो है ना वो आप खुद ही जो है वो गोते खा रहे हैं, अब आप कोई कश्ती तलाश करें और आप कश्ती में निकले, ठीक है ना? डूबने वाला दूसरे डूबने वाले को नहीं बचा सकता, ये बचा सकता है? नहीं, डूबने वाला किसी दूसरे डूबने वाले को नहीं बचा सकता, वही बचा सकता है जिसके पास कश्ती हो, जो कश्ती में सवार हो और कश्ती से फिर नीचे छलांग मार करके बस उसको निकाल करके कश्ती में डाल ले, वो बचा सकता है ना? तो पहले तो अपने लिए कश्ती का इंतजाम करें ना भाई, क्यों नहीं करते कश्ती का इंतजाम? ठीक है, पीछे जो जहेज की बात हो रही थी, तो जहेज का भी जो मसला जो है ना वो उसका हल ये नहीं है कि आप बस बताते रहें कितना बुरा है कितना बुरा है कितना बुरा है, आप लोगों को कश्ती में सवार करें, सवार करें, निकालें, तब जो है ना वो जहेज की लानत को खत्म कर सकेंगे, वरना वो जहेज की लानत को खत्म नहीं कर सकते, ठीक है ना? वरना तो सबको पता है कि कितनी बुरी चीज होती है और जो है वो लोगों के लिए शादी करना अपने बच्चों की मुश्किल हो जाता है, ये हो जाता है वो हो जाता है, लेकिन किसी के पास हल है इसका? नहीं, किसी के पास हल नहीं है सवाए उन लोगों के जो के कश्ती में सवार है, ठीक है ना? इसी तरीके से यहाँ पर भी यही वाला उसूल चलता है। तो फरमाते हैं कि एक बहुत अहम नुकता ये है कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट यू आस्क, इट इज इम्पोर्टेंट हाउ यू आस्क इट, ठीक है? तो उर्दू में इसका तर्जुमा लिखा है कि ये चीज अहम नहीं होती कि आप पूछ क्या रही हैं, आपका रवैया बहुत ज्यादा अहम होता है, यानी आप कैसे पूछ रही हैं। अगर आपने नरमी से कोई बात पूछी है तो वो अच्छा रद्द अमल देगा, और सख्ती से पूछी है तो बुरी तरीके से जवाब देगा। तो सवाल क्या है इसका फर्क नहीं पड़ता, बल्कि किस तरीके से आपने पूछा है इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है? तो बच्चे के साथ जो है वो यानी नरम तरीके से बात करना, सख्त तरीके से जो है वो बात करने से जो है वो रिबेल कर जाएगा, या जो है ना वो कुछ ऐसे मौके होते हैं जिनके अंदर आपको सख्ती करनी लाजमी हो जाती है, लेकिन हर मौका ऐसा नहीं होता, ठीक है? ज्यादा मौके ऐसे होने चाहिए जिसके अंदर आप जो है नरमी से पूछ रही हैं कि भाई क्या चल रहा है आपके साथ और क्या मशगूलियत आपकी क्या है, कैसा चल रहा है, और फिर बच्चे जो है वो अच्छे से जवाब भी देते हैं। अगला पॉइंट है कि टीन एजर जो बच्चे होते हैं, माँ को चाहिए कि शी शुड मेक हर सेल्फ अवेलेबल टू देम, शी शुड मेक हरसेल्फ अवेलेबल टू देम, वो उनके साथ ज्यादा वक्त गुजारे। ठीक है, तो मुझे याद आया किसी ने बताया था कि टीवी के ऊपर एक एड चल रहा था कि जिस एड के अंदर जो है ना उन्होंने दिखाया कि बेबी जो है ना वो घर में है और उसके अब्बू जो है वो उसके साथ हैं, क्योंकि अब्बू जो है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे या जो है वो शायद जॉब उनकी खत्म हो गई थी, तो अब्बू जो है ना वो बेबी के साथ घर पे थे और अम्मी जो थी ना वो अपने ऑफिस के अंदर बैठी हुई थी। ठीक है, तो अब अम्मी को तो चाहिए कि वो शी शुड मेक हरसेल्फ अवेलेबल टू द किड, तो उन्होंने अवेलेबल करने का क्या तरीका निकाला था कि वो वीडियो कॉल किया हुआ था, वीडियो कॉल की हुई थी। ठीक है, तो अम्मी जो एग्जीक्यूटिव साहिबा थी ना वो वीडियो कॉल के ऊपर जो है वो बच्चे को यूं करके दिखा रही है, ऐसे चम्मच ले लो बेटा। ठीक है, और अब्बू जो है ना वो एक्चुअल चम्मच जो है वो उसके मुंह के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे अपने आप को अवेलेबल बेबी के लिए करना जो है ना ये हमें तो नहीं समझ में आता, भाई आपको आता होगा तो आप कर लीजिएगा ऐसे। ठीक है, तो अवेलेबल करने का मतलब क्या होता है, यू हैव टू बी फिजिकली अवेलेबल, नॉट ऑन अ वीडियो कॉल, राइट, नॉट अवेलेबल होना वीडियो कॉल बट फिजिकली अवेलेबल। ठीक है, तो अब जो है वो शौक में जॉब कर रही है या मजबूरी में जॉब कर रही है, यू कैन नॉट बी अवेलेबल फॉर द किड, फिर तो आपको अपने बच्चे को मेड के हवाले करना होगा या किंडरगार्टन के हवाले करना होगा या दद्दा के हवाले करना होगा या नन्ना के हवाले करना होगा। ठीक है ना, किसी के हवाले करके ही फिर आप जॉब कर सकती हैं। ठीक है, तो मेक योर सेल्फ अवेलेबल टू द किड, अवॉइड कॉन्वर्सेशन व्हेन दे आर मूड, व्हेन दे आर इन इन अ बैड मूड। ठीक है, जब वो मूड में हो, उर्दू में जो कहते हैं ना मूड में होना, उसी को जो है वो अंग्रेजी का इन अ बैड मूड, फिर वो ट्रांसलेशन, अब उर्दू में शायद ये जुमला कहा होगा, जो भी है, तो जब वो मूड में हो ना तो उस वक्त उनसे ज्यादा बातें मत करें, क्योंकि उस वक्त उनकी सुनने की हिस तकरीबन खत्म हो चुकी होती है और वो किसी चीज को समझ नहीं रहे होते। ठीक है, तो जो भी जिस वक्त गुस्से में होता है ना, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, तो गुस्से में फिर उसको जो है वो छेड़ने की गलती नहीं करनी चाहिए। तो फरमाते हैं कि डोंट गेट एंग्री और क्रिटिसाइज, कि उस वक्त उनसे नाराज भी नहीं होना चाहिए और उनको तनकीद भी नहीं करनी चाहिए, यानी जब खुद उनका मूड जो है वो खराब हुआ है तो अब आप मजीद जो है ना वो खुद भी गुस्सा हो जाएंगे ना, तो फिर वो और ज्यादा खराब हो जाएगा। अच्छा, ये बड़े मजे के पॉइंट्स हैं अभी, और उसके बाद भी कुछ और पॉइंट्स आ रहे हैं। तो इसमें जो है ना वो बहुत सारी खवातीन ना सिर्फ अपने बालिग बच्चे के साथ डील करना सीखें, बल्कि अपने बालिग जो शौहर साहब है ना उनको भी थोड़ा सा पिक्चर में ले आए। ठीक है ना, जरा तस्वुर में शौहर साहब को भी रखें, वो भी तो बालिग मर्द है ना और बच्चा भी जो है वो बालिग है, तो काफी सारी सिमिलैरिटीज आपको नजर आएंगी। ठीक है, और काफी सारी जो सिमिलर गलतियां जो कि हम बच्चों के साथ करते हैं ना, बालिग बच्चों के साथ, वही जो है ना बहुत सारी खवातीन अपने बालिग शोहर साहब के साथ भी कर, बालिग का लफ्ज खाली इसलिए मजाकिया तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है ना वो सॉरी शोहर जो होता है ना वो नाबालिग नहीं होता, वो भी तो बालिग ही होता है ना, और बीवी के मामले में जो है ना वो फिर वो ऐसे भी बहुत सारे मौके आते हैं कि शोहर साहब भी जो है ना वो फिर बेटे की तरह ही हो जाते हैं, यानी बिहेव इस तरह से करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अकलमंद बीवियां जो है ना वो उनको भी ऐसे ट्रीट, ऐसे डील, यानी ऐसे नाउज़ुबिल्लाह डील करने से मुराद ये नहीं कि उनको बच्चा ही समझ करके जो है वो डांट डपट, बल्कि जिस तरह बच्चे के साथ आप डांट डपट नहीं कर सकती, बच्चे के साथ जो है वो आप उसी तरह शोहर के साथ भी नहीं कर सकती। ठीक है, बहरहाल कहने का मकसद ये था कि जरा शोहर को भी सोच में रखें इन पॉइंट्स को पढ़ने के अंदर। तो डोंट गेट एंग्री और क्रिटिसाइज, जब शोहर साहब गुस्से में हो ना तो आप भी जो है वो आगे से गुस्सा करना ना शुरू कर दें और उसको क्रिटिसाइज करना ना शुरू कर दें, जिस तरह से बेटे साहब को ना ना करें, बल्कि उस वक्त उनकी तारीफ करनी चाहिए। ठीक है ना, तो बेटे की तारीफ करना तो फिर जो है वो थोड़ा सा आसान होता है शोहर के मुकाबले में, तो बेटे की जो है वो तारीफ करनी चाहिए या बेटी है उसकी भी उसको तारीफ करनी चाहिए। वैसे बेटियां उमूमन ऐसे करती नहीं है अनलेस कि आपने उनका बहुत ही ज्यादा खराब किया हुआ हो, तब तो वो करती हैं, वरना बेटियां आती हैं इन मामलों में इतनी जल्दी खराब नहीं होती। ऐसे जो टीनेजर बच्चे होते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज यानी अंदाज तौर तरीकों को समझना चाहिए, ये बॉडी लैंग्वेज का लफ्ज जो है ना, ये बड़ा की वर्ड, बड़ा अहम वर्ड है, ठीक है। कि एक होती है लैंग्वेज जो कि जुबान से बोली जाती है, और एक लैंग्वेज होती है जो कि इंसान के हरकात और सकनात और अंदाज और तौर तरीकों से, ठीक है। जुबान से कुछ नहीं कह रहा लेकिन उसके तौर तरीके ऐसे हैं, उसको बॉडी लैंग्वेज कहा जाता है। तो उनको उसको समझना चाहिए, उनका आई कॉन्टैक्ट यानी दूसरे बंदे की तरफ देख के बात करना, नजरों में नजरें डाल करके बात करना। अब यहाँ पे तो माँ बाप है ना, ठीक है, तो माँ बाप के साथ वो कैसे बात कर रहे हैं, क्या निगाहों में निगाहें डाल के बात कर रहे हैं, बेअदबी के साथ नहीं बल्कि यानी एक होता है छुप करके बात करना और अपनी निगाहों को जाना, वो किसी यानी चोरी की वजह से निगाहों को को चुकाना, तो इसका ख्याल रखें कि वो कैसे बात कर रहा है। तो उनका आई कांटेक्ट बता रहा होता है कि वो किसी वजह से परेशान है और माँ बाप से बात नहीं करना चाह रहा। तो माँ इस बात का बड़ा ख्याल रखे कि ये टीन एजर बच्चे बात करते हुए आई कांटेक्ट, दूसरे बंदे की तरफ देखना, ये रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, नजरें चुराना भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो एक होता है अदब की वजह से आप आंखों में आंखें डाल करके बात नहीं कर रहे, वो बड़ा बड़ा डिफरेंट होता है वो, ठीक है। और एक होता है यानी दिल के चोर की वजह से जो है वो आप अगले बंदे से आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर रहे, इन दोनों में फर्क होता है। तो माँ को जो है इनका फर्क समझना चाहिए। जो टीन एजर बच्चे होते हैं, माँ बाप को चाहिए कि इस उम्र में वो बच्चों को ऐसे मॉनिटर करें और ऐसे नजर रखें कि उनको पता भी ना चले कि हमारे ऊपर नजर रखी जा रही है। तो इसको कहते हैं उकाबी निगाह रखना, उकाबी निगाह, एरियल व्यू भी इसको अंग्रेजी में आप कह सकते हैं। क्या मतलब कि उकाब जो होता है ना, ये ऊंचा उड़ता है लेकिन इसकी निगाह इतनी तेज होती है कि इसको जमीन के ऊपर छोटी सी छोटी जो है ना वो चीज नजर आ रही होती है, और जब उसको कोई अपना शिकार नजर आ जाता है ना, तो फिर वो इतना ऊपर से जो है वो नीचे आता है और फिर उसको शिकार कर लेते हैं, लेकिन रहता ऊपर है, ये नीचे नीचे परवाज नहीं करता रहता, ठीक है। तो उसी तरीके से जो उकाबी निगाह रखने वाले पेरेंट्स होते हैं, मतलब पेरेंट्स को उकाबी निगाह रखनी चाहिए, बहुत यानी ऊपर से देखते रहना चाहिए और मुस्तकिल कॉन्शियस रहना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा इसका लफ्ज ये भी, इससे भी बयान किया जा सकता है कि आप हर वक्त बच्चे के साथ जो है ना वो हर वक्त इंगेज रहना जरूरी नहीं है, ठीक है। यानी बिल्कुल एक एक छोटी छोटी चीज के अंदर जो है उसका एंगेज, उसके साथ लगे हुए हैं, उसके साथ जो है ना वो हर वक्त जो है वो उससे बोले चले जा रहे हैं, उसको कुछ ना कुछ कहे चले जा रहे हैं उसको, इसको इसको कहते हैं इसको, और जरा एक कॉर्पोरेट टर्म है इसके लिए, माइक्रो मैनेज करना। माइक्रो मैनेज करने का मतलब जो होता है, माइक्रो का लफ्ज इस्तेमाल होता है ना बहुत ही छोटी चीज के लिए, माइक्रो का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो बड़ी तफसीली तरीके से किसी को मैनेज करना जो है ना उसको कहते हैं माइक्रो मैनेज करना, जबकि एक होता है मैक्रो मैनेज करना। मैक्रो मैनेज करने का मतलब वही उकाबी निगाह वाला कॉन्सेप्ट, कि आप जो है वो ऊपर ऊपर से तो नजर रखें हर चीज के ऊपर लेकिन हर चीज में घुसने की कोशिश ना करें, हर चीज में जो है ना वो निटी ग्रिटीज जो है ना वो आप इस तरीके से किसी को कंट्रोल ना करें, हर चीज के ऊपर जो है वो ये ऐसे ना करो, ये ऐसे ना करो, ये उधर ना जाओ, ये उधर नहीं करो, ये ऐसे कदम ना उठाओ, वैसे कदम ना उठाओ, ऐसे क्यों टेढ़े होकर के क्यों चल रहे हो, ये क्यों ऐसे क्यों कर रहे हो, ये है ना, जैसे कि कुछ हमने मिसाली बीवी के अंदर भी पढ़ा था ना कि बेगम साहिबा जो है वो साइड वाली सीट के ऊपर बैठी हुई होती हैं और शौहर साहब जो है वो ड्राइव कर रहे होते हैं, लेकिन ये बराबर में बैठ करके शौहर को ड्राइव कर रही होती है, शौहर तो गाड़ी को ड्राइव कर रहा है और ये बैठ करके शौहर को ड्राइव कर रही है। हर चीज के ऊपर तनकीद, तुमने ऐसे क्यों ब्रेक लगा दिया, तुमने ऐसे क्यों गियर क्यों क्यों तुमने सही वक्त पे गियर चेंज नहीं किया, तुमने इधर क्यों मोड़ दिया, तुमने ये क्यों कर दिया, तुमने वो क्यों कर दिया, राइट। तो जिस तरह शोहर को माइक्रो मैनेज करती हैं उसी तरीके से बच्चों को भी माइक्रो मैनेज कर रही होती है, ठीक है। ये सब क्यों कर रही होती हैं, क्योंकि इनकी अपनी नफ्स की इस्लाह नहीं हुई होती, इनकी अपनी कोई तरबियत नहीं हुई होती, इनका अपना जो है ना ये यानी अपने बेसिकली अपने नफ्स के हाथों मजबूर हुई भी होती, ठीक है। तो जिस शख्स के अंदर कोई तहम्मुल ना हो, जिस शख्स के अंदर कोई बुरदबारी ना हो, फिर वो यही करता है। तो पहले जो है ना वो अल्लाह ताला से दुआएं मांग करके अपने अंदर कुछ तहम्मुल पैदा करना होता है, तब बच्चों के साथ जो है ना फिर आप मैक्रो मैनेज कर सकती हैं उनको, और माइक्रो मैनेज करने से जो है अपने आप को बचा सकते हैं। और जो बीवी अपने शोहरों को माइक्रो मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए, वो खाली अपना घर बर्बाद करने के लिए जो है ना वो सामान तैयार कर रही होती है बस। ठीक है, तो टीन एजर बच्चे जो होते हैं, माँ बाप को चाहिए कि इस उम्र में वो बच्चों को ऐसे मॉनिटर करें और ऐसे नजर रखें कि वो बच्चों को पता भी ना चले कि हमारे ऊपर नजर रखी जा रही है। ये बहुत अहम बात है कि ऑब्जर्व व्हाट दे आर डूइंग। यू शुड ऑलवेज नो थ्री थिंग्स अबाउट योर चाइल्ड। तीन चीजें आपको अपने बच्चे के बारे में पता होनी चाहिए, वेयर ही इज, वो कहाँ पर है, विद हुम ही इज, वो किसके साथ है, एंड व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहा है। ठीक है, ये चीजें पता होनी चाहिए, लेकिन पता होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसी वक्त जो है ना वो उनके ऊपर तनकीद करना शुरू कर दें और उसी वक्त जो है ना वो उनको, बल्कि इसके लिए तहम्मुल चाहिए होता है। यानी दोनों चीजें, ये दो चीजें के इल्म भी होना चाहिए और उसके साथ साथ तहम्मुल भी होना चाहिए। ठीक है, इल्म के ऊपर एक्शन जो है ना वो तहम्मुल के साथ करना। ठीक है, अब हम तो सोचते हैं अल्लाह ताला ने हमारे मशायख को कितना हौसला दिया होता है, कितनी हिम्मत और हौसला और कितना तहम्मुल दिया, कि अल्लाह ताला ने तो दिया होता है, लेकिन उन्होंने भी जो है ना वो अल्लाह ताला से इसको मांगा होता है और उसको सीखा होता है अपने बड़ों से। ठीक है, हमारी ऐसी ऐसी गलतियों से वो वाकिफ होते हैं, लेकिन कितना तहम्मुल के साथ हमारे साथ रहते हैं और इसलाह भी करते हैं, लेकिन मौका महल देख करके इसलाह करते हैं। ठीक है, तो भाई माँ भी तो अपनी छोटी औलाद की जो है वो शेफ होती है, बाप भी जो है वो अपनी औलाद का शेफ होता है ना, तो बाप को भी फिर इसी तरीके से जिस तरह मशायख बड़े उम्र के लोगों के साथ डील करते हैं, उसी तरीके से जो बच्चों के शेफ होते हैं वो बच्चों के साथ इसी तरीके से डील करें, तब उनकी इस्लाह होती है, तब उनकी तरबियत होती है। अच्छा, फरमाते हैं कि जो माँ बाप इन बातों का ख्याल नहीं रखते, तो फिर जो टीनेजर बच्चे होते हैं वो उल्टे सीधे कामों और हरकतों में मुलव्वस हो जाते हैं। ठीक है, माँ बाप अगर इन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे और मेरा बच्चा ये नहीं कर सकता, इतना एतमाद बच्चे के ऊपर, ठीक है मेरा बच्चा ये नहीं कर सकता, हाँ दूसरे का बच्चा तो कर सकता है, दूसरे का बच्चा उसका बच्चा नहीं है, ये नहीं कि मेरा बच्चा नहीं कर सकता, तो भाई दूसरा भी तो किसी का बच्चा ही है ना, तो उसका बच्चा भी फिर ये काम नहीं कर सकता। नहीं, ये उसूल सिर्फ मैं अपने लिए कर सकती हूँ, दूसरों के लिए ये उसूल नहीं चलता, क्योंकि उसका बच्चा जरूर कर सकता है बुरा काम, मेरा बच्चा नहीं कर सकता। तो भाई इसका बड़ा आसान सा और सादा सा जवाब है, भाई किसी का बच्चा नहीं कर सकता, लेकिन शैतान तो करवा सकता है ना। ठीक है ना, तो हम बच्चों पर एतमाद करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन हम शैतान के ऊपर एतबार नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो हम बड़ों को भी इसी तरीके से समझाते हैं, हत्ता कि अगर बच्चे भी कभी कोई ऐसी चीज मांग लें या किसी ऐसी चीज की इजाजत मांग लें जो कि उनके लिए खतरनाक हो सकती है, नुकसानदेह हो सकती है, तो हम बच्चों को भी ऐसे ही समझाते हैं कि बेटा मैं आपके ऊपर एतमाद, जैसे बच्चा है ना, नहीं है आप वो, आप हम पे ट्रस्ट करें, आप हमें हम कुछ नहीं करेंगे, तो और लेकिन है कोई ऐसी चीज, अब बच्चों को नहीं पता होता ना उसकी, उसका इल्म इतना नहीं है, उसका तजुर्बा, उसका मुशाहिदा, ये सब कुछ उसके पास नहीं है। ठीक है, तो अब माँ बाप के पास है तो उनको वो तो नहीं दे सकते उसको वाली चीज, तो फिर क्या है बेटा, हम आप पे एतमाद जरूर करते हैं, लेकिन हम शैतान के ऊपर एतमाद नहीं कर सकते कि वो आपको गलत रास्ते के ऊपर नहीं लेकर के जाए। ठीक है, और उसी तरीके से जो इंसानी शैतान होते हैं, अगर आप जो है वो किसी ऐसी जगह पे जाएंगे तो वहां पे इंसानी शैतान मौजूद होते हैं, तो हम उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो कोई उल्टी सीधी हरकत आपके साथ नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे पार्क्स के अंदर जो है ना वो बच्चियां चली जाएं या बच्चे छोटे अकेले चले जाएं या इवन दो की शक्ल में भी चले जाएं, तो ऐसे ऐसे प्रेडेटर्स होते हैं वहां पे, प्रेडेटर्स, प्रेडेटर कहते हैं जो कि खून खार खा जाने वाली मखलूक, उसको प्रेडेटर कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे इंसान भी बहुत हैं दुनिया के अंदर, ठीक है, जो कि प्रेडेटर्स होते हैं स्पेशली फॉर किड्स, बच्चों के लिए। ठीक है, तो अब वो जो है ना वो ऐसे बच्चों को देख करके या पार्क्स के अंदर जो है वो जहाँ पे दरख्त वगैरह लगे हुए हैं तो वहां पे कुछ छुपने वाली जगह होती है ना, ऐसे तेजी के साथ वो अपना काम करते हैं कि किसी को पता भी ना चले और बस वो काम करके उसके बाद उन्होंने भाग जाना होता है या बच्चों को लेके भाग जाना होता है। वो तो किडनैपिंग एक अलग पुराना मसला है किडनैपिंग का, अब नया मसला ये है वो किडनैप विडनैप नहीं करते, वहीं पे अपना हरकत कर कर करके इधर ही छोड़ करके खुद भाग जाते, ऐसे भी केसेस आते रहते हैं। ठीक है ना, तो बच्चियों को जो है वो उधर, हाँ जी अपने दोस्तों के साथ जाओ, पार्क में चले जाओ, ऐसी ऐसी गंदी चीजें होती हैं, बयान नहीं कर सकते क्लास के अंदर, इतनी गलीज और इतनी गंदी चीजें होती हैं। और अजीब, हम अपनी जल्दबाजी, कुछ लोगों के हैं ना बहुत, उनका बड़ा मसला है जल्दबाजी करना ना, तो उनको कोई काम जल्दी से करना होता है, अब कोई बड़ा अवेलेबल नहीं है, बच्चे से करवा दिए फौरन, बच्चों को भेज दिया बाहर, बच्चों को भेज दिया किसी ऐसी जगह के ऊपर, क्योंकि काम करना है, बस बेचैनी हो रही मुझे, बस जब तक ये काम होगा नहीं तो मेरी बेचैनी खत्म नहीं होगी, तो बेचैनी खत्म करने के लिए जो है वो कोई बड़ा नहीं कर रहा, मैं नहीं कर सकती, खुद नहीं कर सकती, तो बच्चों को भेज दिया जाकर, राइट। और फिर उसके बाद बच्चे के साथ क्या होता है, वो उसने आके बताना भी नहीं है आपको, क्योंकि इतनी गंदी चीज होगी, कोई इतनी भयानक किस्म की चीज होगी, वो बताने से डरेगा, तो नहीं बताएगा आपको बच्चा आकर के घर पे। अब समझ नहीं है कि सब ठीक है, वो सब मेरा बच्चा तो जैसे गया था वैसे ही वापस आ गया, नहीं वो छुपा रहा है आपसे, आपसे छुपा रहा है, उसके साथ हो चुका है बहुत कुछ, ठीक है, तो ऐसा होता है। उल्टे सीधे कामों में फिर उनके साथ जब एक दफा ऐसा कुछ हो जाता है ना, फिर उसके बाद वो मुलवस हो जाते हैं ऐसी चीजों में, फिर वो ऐसी उनकी जिंदगी खराब हो जाती है, या तो वो खुद किसी और के साथ ऐसे हरकतें करना शुरू हो जाते हैं जैसा कि किसी ने उनके साथ कर दी होती है, या फिर वो कोई जहनी मरीज बन जाते हैं। और किस वजह से, क्योंकि माँ बाप जो है ना वो अकल के नाखून नहीं लेते, इस वजह से, ठीक है। तो क्लास का टाइम मुकम्मल हो गया, तो हम यहाँ पे आज की क्लास रोकते हैं दुआ के साथ कि अल्लाह हमें सुनने की और हमें समझने की और उसको याद रखने की और उसको अपने अमल में लाने की तौफीक अता फरमा दीजिए, और हमें और हमारे आने वाले नस्लों को हर किस्म के शुरूर और फलियात से महफूज फरमा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।